نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 53 آيت نمبر 1 سے 6 سورة نساء. لسن نمبر 53 آيت نمبر 1 to 6 سورة النساء. سورة کا پہلا سبق ہے. کچھ چیزیں ہم پہلے سورة کے بارے میں دیکھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے لیسن کا خلاصہ کرتے ہوئے آیتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کی تین صورتیں پوری کر لیں. سب سے پہلی صورت جو حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی لیکن پیغام کے اعتبار سے بہت بڑی تھی, صورت الفاتحہ, جس کے بارے میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف صورت الفاتحہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کا انڈیکس ہے, جو کچھ پورے قرآن میں بعد میں آتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے. مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے, دو بار نازل ہونے کی بات بھی ملتی ہے ہمیں. اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی اور اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی. تو دیکھا جائے تو دو صورتیں جو بڑی تھی وہ ہم پڑھ چکے, اور ہم دونوں صورتوں کے پڑھنے کے دوران بار بار یہ کہتے رہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیئر ہیں, رائٹ, جوڑا ہے, اس طرح سے ہیں. اب اگر اس وقت دیکھیں تو ہم سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ نساء پر کھڑے ہیں. سورۃ بقرہ, سورۃ نساء, سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ, یہ چار صورتیں ہیں جو دو دو صورتوں کے جوڑے ہیں. پہلا جوڑا ہم پڑھ چکے, سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا. دونوں کا نام بھی ہم نے جان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, زہراوین, دو چمکتی ہوئی صورتیں, اور جو اس کے اندر باتیں تھیں وہ سب کچھ ہو گئیں. اب ہم اس وقت دوسرے جوڑے کی پہلی صورت شروع کرنے والے ہیں جس کا نام سورۃ نساء ہے. سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ ایک جوڑے میں ہیں, اور جوڑا اس طرح سے جیسے کانٹراسٹ, ایک ہوتا ہے نا پیئر, ایک ہوتا ہے سپاؤس, یعنی عورت کا جوڑا عورت سے نہیں ہو سکتا, مرد سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر رائٹ فٹ ہے تو اس کے ساتھ لیفٹ فٹ کا شوز ہوگا یا ساکس ہوگی. تو جوڑے جو ہوتے ہیں نا اس میں کنٹراسٹ بھی ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں جو کامن تھنگز ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران دونوں حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھیں, یہ دونوں صورتیں اس سے بغیر شروع ہوئیں. اس صورت کا ہم دیکھیں گے یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے, تو سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگی. ایک کامن چیز اس میں دیکھ لیجئے. پھر دونوں صورتوں میں قرآن پاک اور جو ظاہری کتابیں ہیں جن کا ہم پیچھے دیکھ چکے کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے شروع میں قرآن کا تذکرہ تھا, وہاں کیا تھا, ذالک الکتاب لا ریب فی, اور سورۃ آل عمران سے پہلے شروع میں کیا تھا کہ ہم نے وہ کتاب نازل کی جیسے آپ سے پہلے ہم نے دوسری کتابیں نازل کی تھی, ٹھیک ہے. اس کے برعکس اس صورت میں کوئی تمہید نہیں ہے. تمہید کہتے ہیں جیسے بات بنانا, بیک گراؤنڈ کرنا, سیٹل ڈاؤن کرنا, براہ راست خطاب ہے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے دونوں صورتوں کو دو دو حصوں میں بانٹا تھا, بقرہ اور آل عمران کو. ادھر ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کو اگر دکھے گا تو براہ راست سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا عدل اور اس کی رحمت دکھے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کو بھی اور انسانوں کو پکارا ہے. بلکہ پہلا لفظ جو ہوتا ہے نا سورت کا وہ بہت اہم ہوتا ہے, یا ایھا الناس ہے نا, تو آپ کہہ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے دنیا کے لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانوں کے لیے ایک کمپلیٹ پیکج ملتا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی سوسائٹی کو کامیاب کرنے میں جو سب سے بنیادی چیز, گھر, फैमिली लाइफ, उसका तذکرہ होगा कि कैसे एक इंसान ये सारी बातें करते हैं। किसी इंसानी मुआशरे में सबसे पहले घर को सही किया जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। और घर के दो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, औरत और मर्द। जिस मुआशरे में दोनों में से किसी एक को हक मिले और दूसरे को ना मिले, तो वहाँ अदल नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत में औरतों के हकूक की बात हुई। सूरत का नाम भी देखिए तो सूरत निसा है। निसा औरत को कहते हैं, जमा है इमरातुन की। इमरातुन कहते हैं एक औरत, और निसा बहुत सारी, यानी वुमेन जिसको आप इंग्लिश में कहें। पूरे कुरान में रिजाल नाम की कोई सूरत नहीं है, मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। और एक शख्स जो मुस्लिम नहीं था लेकिन उसने कुरान पे गौर फिक्र किया, उसने कहा कि अगर मुझे ये यकीन ना होता कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है, तो मैं ज़रूर कहता कि इस कुरान की राइटर एक औरत है। यदि जितना ज़्यादा इस कुरान में औरतों के हकूक़ की बात की गई है, तो ये तो एक औरत ही कर सकती है। इसी तरह सूरत निसा में हमें मुआशरे के कमज़ोर तबकात, यानी यतीम मिस्कीन, इनका तذکرہ मिलेगा। गोया कि आप कह लीजिए कि सूरत निसा कमज़ोरों को उनके हक दिलवा रही है। और जब ये हकूक मिलने लगते हैं तो वो माशरा बड़ा खूबसूरत हो जाता है। सूरत आले इमरान में हमने कोई हुक्म नहीं पढ़ा, याद है आपको? उससे पहले मैंने बताया था बहुत सारी दुआएं थी, कुछ नहीं है, ठीक है, सिवाय एक हल्का सा इशारा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू रिबा अदाफ़ मुदाफ़ा, और वो भी पिछले हुक्म ही की बात थी, आयत 130 में थी, ठीक है। लेकिन सूरत निसा में मुआशरती अहकाम की कसरत मिलेगी। मर्दों को भी तवज्जो दिलाई जा रही है और वालियों को, वरसा को भी। किसी मुआशरे में भी सेक्स का मौजू बड़ा अहम होता है। किसी मुआशरे में अगर सेक्सुअल डीड्स जो हैं या जिनसी मामलात है, अगर उस पर रोक टोक ना हो, तो वो मुआशरे बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं और नसब कायम नहीं रहता। सूरत निसा में हम इस्लामिक मैरिज ए टू जी पढ़ेंगे, कि जिसमें ये बताया गया कि अगर वक्त पे शादियां ना हों और शादियों के लिए हालात साजगार ना हों, तो नुकसान क्या होता है कि माशरे में बेहयाई और बदकारी फैलती है। बल्कि होमोसेक्स, जिसको हम जिन्स परस्ती कहते हैं, उसका भी तذکرہ इस सूरत के शुरू में ही हमें मिल जाएगा। और जिना के सिलसिले की तदरीजी, यानी ग्रेजुअल जो सजाएं थी, उसका तذکرہ भी इसमें, जिसकी तकमील सूरत नूर में जाके होगी। इसके बरक्स हम जब सूरत मायदा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग पे बहुत बोझ पड़ेगा। सूरत मायदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनरिच्ड सूरह है। उसकी बातें जब वहाँ होंगे तो वहाँ करेंगे, लेकिन सूरत निसा पढ़ते हुए आपको बड़ा सॉफ्टनेस का एहसास होगा। इसके अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी कि जिनके ऊपर अगर कोई अमल कर ले तो माशरे में अमन कायम होगा। अब ये तो बातें थी सूरत के नाते से। अब थोड़ी सी बात हम इसके शाने नज़ूल पे करते हैं। बड़ी दिलचस्प तरतीब है, कभी गौर कभी लोगों ने किया होता है, जब तक कुरान ना पढ़ें और ख़ास तौर पे इसके सियाक व सबाक को साथ ना रखें, तो सूरत निसा जो है ये तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है ना, ठीक है, चौथी सूरत है अगर हम साथ उसको ले लें। लेकिन ये सन 3 हिजरी से 4 हिजरी और कुछ हिस्सा सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ। मज़े की बात देखिए, सूरत अल बकरा हिजरत के फ़ौरन बाद से लेके गज़वे बदर तक कौन सा साल था? पहला, दूसरा। सूरत आले इमरान का बेशतर हिस्सा सन 2 से 3 हिजरी, और अब तरतीब देखिए कि सूरत निसा में 3 से लेके 5 हिजरी के औकात में ज़्यादा हिस्सा नाजिल हुआ। और याद रखिए, हर सूरत में कोई ना कोई एग्जेम्पशन ज़रूर होती है। जैसे कुरान की आखिरी आयत सूरह बकरा में हमने पढ़ ली तरतीब नज़ूल के अतबार से, इस तरह अल यौम अकमल तू में सूरत मायदा में हम पढ़ेंगे एक आयत, तो एग्जेम्पशंस होती हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ सूरतें जो होती हैं उनका तरीका ऐसे मालूम है। ये सूरत क्यों नाजिल हुई? पीछे हमने गज़वाए ओहद का तस्करा पढ़ा, और उसमें हम ये भी पढ़ चुके कि 70 लोग शहीद हो गए। गज़वाए ओहद के नतीजे में जब 70 लोग शहीद हो गए, तो घर घर में बेवाएं और यतीम हो गए। अब क्या करें उनको? किस तरीके से उनका मामला किया जाए। तो लिहाजा सूरत निसा नाजिल हुई, जिसमें यतीमों की किफालत और बेवा औरतों के हकूक की बात हुई। बल्कि आप कह सकते हैं कि निकाह और शादी का मौजू पहली दफ़ा सूरत निसा में आ रहा है हमारे सामने, और ये कवारी लड़कियों से ज़्यादा बेवाओं और उम्र रसीदा औरतों की सूरत में हमारे सामने आता है। तो ये है वो कुरान की तरतीब जिसके अमूमन हम गौर नहीं करते। बाज़ लोग कहते हैं क्या है, कभी कोई आयत कभी कोई, बाज़ लोग कहते हैं पहले हम 30वां पारा पढ़ लें, कुछ कहते हैं जी पहले मक्की सूरतें पढ़ लें। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ से लेके सूरत तौबा तक आपको बिल्कुल तरतीब मिलेगी, मदनी दौर की ये सूरतें आ रही हैं। क्योंकि असल इस्लाम की जो तरतीब बनी थी ना, वो मदीना में आने के बाद बनी थी। तो ये आप तरतीब के साथ चेक करते जाएंगे तो ये सब कुछ मिलेगा। इसी तरह इस सूरत का एक बहुत बुनियादी हिस्सा मुनाफिकों के बारे में है कि निफाक क्यों पैदा होता है, वो सारे असबाब जिनकी वजह से मुनाफिकत पैदा होती है और उनके साथ क्या मामला करना चाहिए। सलातुल खौफ का जिक्र इस सूरत में आएगा, तयम्मुम का जिक्र इस सूरत में आएगा, एक से ज़्यादा शादियों का तذکرہ इस सूरत में आएगा, निकाह के जो बुनियादी अरकान हैं यानी जिनके बगैर एक लड़के और लड़की का निकाह नहीं होता, वो इस सूरत में आएगा। फिर इसी तरह से इस सूरत में बिगड़े हुए शौहर की सलाह और बिगड़ी हुई बीवी को कैसे समझाया जाए, इसकी बात है। आप देखेंगे कि इस्लाम के अगर अहकाम पे हम अमल करें तो तलाक़ होने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही ये सारे हालात ठीक हो जाएं। दूसरी चीज़ माल, इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पे मनी मैटर्स की बात आएगी। कहाँ से शुरू होकर यतीमों के माल से लेकर विरासत के माल तक, कि जिंदगी भर तो जो माल था सो था, तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे माल का क्या होना है वो भी इसमें पता चलेगा। इसी तरह इस सूरत में हक और बातिल की जंग का तذکرہ है। ग़ज़वा बदर से आगाज़ हुआ था, आज तक जारी है और क़यामत तक रहेगा। मुसलमानों को हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगानी है, उनके हौसले बुलंद किए जा रहे हैं। इसी तरह एक बुनियादी और इस सूरत का टॉपिक है और वो है करेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। किसी इंसान का खूबसूरत करेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नुस्खे मिलेंगे। और एक और इसका बुनियादी टॉपिक अतीउल्लाह और अती रसूल है, जिसमें रसूल की इताअत और गैर मशरूत इताअत, अनकंडीशनल किस्म की रसूल की बात मानने का हुक्म है। हम इस सूरत को पढ़ेंगे जब पास दफ़ा, तो बिल्कुल हमें ऐसे महसूस होगा कि हम मदीना में बैठे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और कुछ लोग उनकी बात सुन के मान रहे हैं और कुछ उसकी वजह से इधर उधर की बहसों में पड़े हुए हैं। तो ये तो चंद बातें थी, बाकी बहुत कुछ इसमें हम इंशाल्लाह सूरत में पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे इसको पढ़ते वक्त अब आप अपने जहन में रखिए कि मदीना को बने हुए अभी 3 साल हुए हैं, एक न्यू स्टेट, मुस्लिम स्टेट, इस्लाम के नाम पे बनने वाली स्टेट, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया, हमें इस सूरत में उसकी भी झलकियाँ मिलेंगी। कि नबी सल्लम का ये कारनामा था कि नई बुनियादों पे काम शुरू हुआ था, लेकिन इतने थोड़े अरसे में इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो यहूद थे, औसर खजरज थे, मुनाफिकीन थे, इन सब के साथ अल्लाह के नबी सल्लम ने कैसे डील किया। ये तो थी चंद बातें सूरत की।